नियमसार नामक जो शास्त्र है उस पर जो गुरुदेव के प्रवचन रत्न चिंतामणि इस पुस्तक से प्रकाशित हुए जो प्रवचन है उस शास्त्र के हम पेज नंबर 14 पर आए हैं। यहां 14 पर बीच में जो लाइन है ना, पण आवाद बहु झीणी छे, यहां तक हमने पहले पढ़ लिया था। अभी हम ये देख रहे हैं कि यह जो है नियमसार का तीसरा अधिकार है जिसका नाम है शुद्ध भाव अधिकार। उस शुद्ध भाव अधिकार के हम इसके बारे में तो बहुत बार आपको बताया क्या बात है करके। अब देखो यहां पे ये कह रहे हैं आ मार्ग एवो झीणो छे, कहे छे कि जीवादि पदार्थों ना ज्ञान स्वभावे ज्ञान अनुत्थमू परिणमू ते ज्ञान छे। देखो यहां ज्ञान किसको कहने में आया है कि जो ज्ञान स्वस्वरूप से परिणमित हुआ है, जैसा स्वयं का स्वभाव है, जैसा स्वयं का स्वरूप है, उस रूप से जो ज्ञान परिणमा है उसको यहां ज्ञान कहने में आया है। क्या कहा देखो, जीवादि पदार्थ होना ज्ञान स्वभावे ज्ञान अनुथमू, यानी यहां सातों ही तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना ने परिणमु ते ज्ञान छे, तथा रागादिना त्याग स्वभावे ज्ञान अनुथमु परिणमु ते चारित्र छे। देखो यहां तो ऐसी विशेष बात बताई है कि ज्ञान गुण के माध्यम से ज्ञान सम्यक ज्ञान को भी समझाया और ज्ञान गुण के माध्यम से चारित्र को भी समझाया। क्या कहते देखो, रागादिना त्याग स्वभावे ज्ञानुत्थमु, ये तो भाई ऐसी बात है कि स्व को जानते ही, स्व स्वभाव को समझते ही, स्व स्वभाव को पहचानते ही वहां क्या बात होती है कि मैं राग रूप नहीं हूं, ये बात तो नक्की हो जाती है। तो वहां जो लिखा है रागादिना त्याग स्वभावे ज्ञानुत्थमु, ये भी तो कहते हैं ते चारित्र छे, ज्ञान शब्दे आत्मवस्तु छे अने तेनु परिणमन थमूं ते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र छे। आहा, मारक तो आवो छे, नियमसार जीनी पांचमी गाथानी टीकामां पण जीवादि शब्द छे अने समयसारनी 155मी गाथामां पण जीवादि शब्द छे परंतु 155मी गाथा में जीवादिना श्रद्धा ने निश्चय समकित कहूं छे। जारे पांचमी गाथा में जीवादिना श्रद्धा ने व्यवहार समकित कीधु छे, अर्थात 155मी गाथा में निश्चय कहो छे, जारे पांचमी गाथा में व्यवहार कहो छे। क्या कई अपेक्षा छे ते जाणवी जोईए ने। अभी वहां वो जीवादि पदार्थ कहने से वो जीव जो है ना, वो जीव को वहां निश्चय जीव जो है उसकी बात की है, और यहां जो है 105वीं गाथा में तो यहां ये भिन्न भिन्न जो सात तत्व है उसकी उसमें जीवादि की बात की है। यहां पांचवीं गाथा में जे बधा प्रकार पर्याय भेदनी बात छे, अने 155वीं गाथा में कहे छे कि एकला जीवन ज्ञान थयुं क्या आ जीवादि पर्याय तेमां नथी एवं ज्ञान पण साथे आवी जाय छे। कारण के ज्ञान नो ज एवो स्वभाव छे के अखंड अभेद चैतन्य नु ज्ञान थता तेमां पर्यायनो भेदोनो अभाव छे, एवं स्वपर प्रकाशक ज्ञान स्वतः थाय छे। अर्थात यहां पर में सब पर्याय उनको पर में लिया है, ख्याल में। अर्थात स्वनु ध्यान तथा परनु ज्ञान स्वतः थाय छे। आगे क्या बताते, परंतु परनु ज्ञान तथा स्वनु ज्ञान थाय छे एम नथी, आवो मारक छे। आई कहे छे के जीवादि सात तत्वों समूह परद्रव्य होवाने लीधे जोयू, अहीं कारण आपे छे के ए जीवादि तत्वो परद्रव्य होवाने लीधे खरेखर उपादेय नथी। संवर निर्जरा ने मोक्ष भले व्यवहारे उपादेय कहेवामां आवे पण खरेखर उपादेय नथी, आवो मारक छे। जीवादि सात तत्वो जोयूं ए तत्वो अस्थिरूप एटले भावरूप एटले सत्स्वरूप छे पण अभाव रूप नथी, भाव रूप छे। यानी ये सात तत्व नहीं है ऐसी बात नहीं है, सात तत्व तो है, वो अभाव रूप नहीं है, भाव रूप है, सद्भाव रूप है। केम के ए जीवादि पर्याय पण सत छे, क्योंकि वो भी तो एक समय की क्षणिक सत है ना, एक समय की सत रूप है। अने तेने जुओ तत्व कया छे जीवादि सात तत्व, एटले के जीवादि तत्वो वस्तु छे, वस्तु एटले हय्याती धरावे छे, परंतु तेमनो समूह परद्रव्य होवाने लीधे तेवो त्रिकाळी स्वद्रव्यती भिन्न होवाने लीधे त्रिकाळी द्रव्यनो स्वभाव ध्रुव छे, तेनाथी आ सात तत्वो अन्य होवाने लीधे तेमने अहीं परद्रव्य कहेवामां आवे छे, अने तेथी तेवो खरेखर उपादेय नथी। जो के गाथाना पाठ में हेयम छे ने त्यारे आई टीका में खरेखर उपादेय नथी एम नास्ती थी कहूं छे, केम के उपादेयम अपणो अप्पा एम गाथा में छे ने, एटले टीका में आ जीवादि उपादेय नथी एवो अर्थ कर्यो छे। शुं कीधु ए समझाणो, ऐसा पूछ रहे के गाथामां पाठ तो एवो छे के जीवादि बहित्तच्चम हेयम, पण टीकामां हेयम शब्द न वापरता उपादेय नथी एम कह्युं छे, केम के आत्मा उपादेय छे तो आ जीवादि उपादेय नथी एम अस्ति नास्ति करवा माटे टीकामां ए वात करी छे। खरेखर उपादेय नथी अर्थात वस्तु जे त्रिकाळी भगवान आत्मा छे ते केवल नजर करवा लायक छे, नजर करवा लगे ले सिर्फ देखने लायक ऐसा नहीं, उसमें दृष्टि करके एकाग्र होने जैसा, नजर करवा लायक यानी दूसरे की तरफ देखो ही मत। क्या कह रहे देखो, या ये बात समझा रहे हैं कि गाथा में तो लिखा है हे ये है, लेकिन टीका में लिखा है कि उपादे खरेखर उपादे नहीं, तो क्या कहते हैं कि खरे वस्तु त्रिकाणी जे भगवान आत्मा छे ते उपादेय छे, एटले वो अस्थि में बात करी और ये जीवादि बाह्य तत्व है वे उपादेय नहीं, इस तरह से उसके नास्ति से बात कही, तो अस्थि नास्ति समझाने के लिए वहां तो सिर्फ हेय और उपाधि इतनी बात थी, तो यहां आश्रय करने योग्य और आश्रय नहीं करने योग्य ऐसा समझा है। और आगे लिखते हैं आ जीवादिना भेद नजर करवा लायक नहीं, तो सूचे कि जे त्रिकाणी भगवान आत्मा है तेज केवल नजर करवा लायक है, यानी केवल यानी ओनली, उसके अलावा और कोई है नहीं कि जिसका हम आश्रय ले सके, जिसके ऊपर दृष्टि केंद्रित कर सके, तेथी ते वो उपादे नथी एम कहेवामां आवे छे। हवे कहे छे के सहज वैराग्य रूपी महलना शिखरनो जे शिखामणी छे, शू कीधु मुनिराज पोतानी, एटले मुनिनी वात करे छे, पण एटले कोई एम कहे कि आ नियमसार मुनिने माटे छे तो एम नथी, ए तो मुनिराज पोतानी वात करीने अहीं कहे छे, बाकी आ तो सम्यक दर्शनना विषयनी वात छे। शुं आवुं सम्यक दर्शन मुनिने ज होय छे, मुनिने ज होय एम छे कई ना, समकीतीने पण होय छे तेथी तेनी पण वात छे। यानी जब स्वामी जी थे उस समय ऐसी बात बहुत चल रही थी कि समयसार नियमसार आदि जो शास्त्र है वो श्रावक नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहां तो सिर्फ मुनियों की ही बात की है, तो यहां पर ये बात साबित कर रहे हैं कि ये समकीति को यानी जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसको भी और जो सम्यक दृष्टि है उसको भी ये शास्त्र पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं, बाधा नहीं, पढ़नी ही चाहिए। और वैसे तो आपने समयसार पढ़ा होगा तो उसमें तो हमेशा ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों की ही तुलना की है कि ज्ञानी किसे कहना और अज्ञानी किसे कहना, ये जीव कब ज्ञानी कहलाएगा ऐसा पूछते हैं, तो उसने वहां पूछते हैं कि भाई ये टाइम पूछा कि ज्ञानी कब होगा, तो कहता है कि जब तू आश्रम से भिन्न स्वयं को जानेगा, तो कब जानेगा जब तेरी मर्जी, टाइम न तो 6 महीना 4 महीना बरस 10 बरस ऐसा कब ज्ञानी होगा, अरे अब भी 1 सेकंड में तू आश्रो से मैं भिन्न हूं ऐसा जान मान ज्ञानी हो गया तू। वो पूछने वाला टाइम से पूछता है कब होगा और वो क्रिया से बता दे कि ऐसा करेगा तो तू होगा। यानी वहां ज्ञानी और अज्ञानी ऐसी ही विशेषता वहां तुलना की गई है बारंबार, और यहां कह रहे हैं कि ना समकीति ने पण होई छे शू कि सम्यक दर्शन कोने होई छे, तो और दूसरी भी बात ऐसी चल रही थी कि सिर्फ मुनियों को ही सम्यक दर्शन होता है, यानी सातवें गुणस्थान वर्ती जीवों को ही सम्यक दर्शन होता है, चौथे वाले को नहीं होता है, ऐसी वहां उस समय उस जमाने में बात चलती थी, इसलिए वो बात यहां इन्होंने रिफर की है। अभी ये नीचे से ऊपर से 5वीं लाइन नीचे से भी 5वीं है, परंतु आ गाथामां मुनिराजनी वात आवी एटले कोईने कदाच एम थाय कि आवुं समकीत तो मुनिने ज होय छे अने तेमनी ज अहीं वात छे तो एम नथी, आ वात अंशे समकीतीने पण लागू पड़े छे। आहा अहीं तो मुनिराज पोते पोतानी भूमिकामां रहीने पोतानी वात करे छे अने तेथी कहे छे के आत्मा कोने उपादेय छे के आवा मुनि ने उपादेय छे। अज्ञानी आमाथी एम काढे छे के नीचे चौथा पांचवा गुणस्थान वाला समकीति ने आत्मा उपादेय नथी। जिसको कुछ कुछ अपने दिमाग से बात निकालनी है तो अपने भाव भाषण के अनुसार वो कुछ भी खोटी बात निकाल लेंगे। चौथा पांचवा गुणस्थान वाला वो हो गया ना, वड़ी अज्ञानी कहे छे के जो आ गाथा में एम कहूं छे के वीतराग भाव वाला मुनि ने आत्मा उपादेय छे माटे निश्चय समकित मुनि ने ज होय छे, पन ए वात साची नथी। सहज वैराग्य अर्थात परतरफनू जोर पांचू सोमा लावूं पूर्णानंद प्रभु आत्मा स्व छे ने ते उपादेय छे तेथी मुनि ने परतरफनो वैराग्य थई गयो छे तेवो परती हटी गया छे एम कहे छे। सहज एटले स्वाभाविक वैराग्य रूपी महलना शिखरनो जे शिखामणी छे पर्याय प्रत्ये पण जेने उदास भाव छे मुनि ने देखो यहां पर अभी बात चल रही ना ये जो सात तत्व बताए हैं ना वो सात ही तत्व पर्याय स्वरूप बताए हैं उसमें किसको किसको लिया मोक्ष को भी लिया अभी संवर निर्जरा को तो लिया ही लिया धर्मरूप पर्याय को भी लिया लेकिन कहते हैं कि मोक्ष भी पर्याय तो वह भी हेय है परद्रव्य है तो कहते पर्याय प्रत्येपन जेने उदास भाव छे ऐसे मुनिराज है उनको पर्याय की महत्ता है ही नहीं वो तो अपने स्वरूप में ही स्वरूप का ही चिंतन करते हैं स्वरूप में ही लीन रहने की कोशिश करते हैं और रहते भी हैं। मुनि ने स्वतरफ न उपादेय भाव छे तो आ पर्याय आदि तरफ उदास छे एम कहे छे। अहो हो दिगंबर मुनियो चारित्रना अनुभव सहित जे वात करी छे ते अलौकिक छे जे वस्तु उपादेय नथी तेनी प्रथम वात करी हवे उपादेय कोण छे अने कोने छे ते कहे छे उपादेयम अपणो अप्पा एम पाठमां आव्युं छे ने तो हवे तेनी व्याख्या करे छे के जे आ त्रिकाळी द्रव्य वस्तु भगवान आत्मा छे ते सिवायना साते तत्वो अभी देखा यहां क्या बात ली त्रिकाळी आत्मा की बात की ये जीवा जीव जीव तत्व है ना वो जीव तत्व में पर्याय तत्व लिया है और यहां क्या बात कर रहे हैं आ त्रिकाळी द्रव्य वस्तु कौन भगवान आत्मा ते सिवायना साते तत्वो तो सात तत्वों में जीव तत्व आ गया कि नहीं संवर निर्जरा ने मोक्ष पण उपादेय नथी तो उपादेय शू एटले कोण छे अने कोने छे के सहज वैराग्य रूपी महल महल एटले मोटो बंगलो मुनि ने आखी दुनिया प्रत्ये अंतरमा उदास भाव छे परथी खसीने तेओ स्वभावना आसनमा विराजे छे तेथी तेओ सहज वैराग्य रूपी महलना मोटा बंगलाना शिखरनो शिखामणी शिखामणी एटले टोच उपरनु रत्न चूड़ामणी कलगीनु रत्न आहा कहे छे के जेने आखी दुनिया प्रत्ये उदास वैराग्य छे तो कोई एम कहे के आ उदासी केवी आ वैराग्य क्यों के महल में रहे छे मोटा बंगला में अरे भाई ये वैराग्य रूपी बंगला में जे ख्याल चूंकि तो आहा कहे छे के जेने आखी दुनिया प्रत्ये उदास वैराग्य भाव छे एटले के जेओ पर्याय ने ग्रहण करवा प्रत्ये पण उदास छे एवा सहज वैराग्य रूपी महलना शिखरना शिखामणी टोचना रत्न समान धर्मात्मा ने आत्मा उपादेय छे अर्थात जे पर्याय थी उदास थाय छे ते पोतानी त्रिकाळी अस्थि ने पकड़े छे एम केमू छे। कल में कहे छे के जो पर्यायों से भी पर्याय में उदास हुए हैं पर्याय के प्रति उदास हुए हैं वह स्वयं के त्रिकाली स्वभाव जो है उसके अस्थि यानी उसके अस्तित्व को पकड़े जाए उसमें लीन होते हैं। क्यों कहूं कि धर्मात्मा वैरागी होई छे धर्मात्मा ने परथी एटले निमित्त थी राग थी अने एक समय ना पर्याय थी पन वैराग्य होई छे धर्मात्मा ने किसको कहा है सम्यक दृष्टि जीव को तो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है ये वैरागी यानी यहां मुनियों की अपेक्षा से बात की है तो कहते हैं धर्मात्मा ने पर थी निमित्त थी राग थी अने एक समय ना पर्याय थी ये सब बातें लिए पर में सबको डाल दिया तो कहते ये पन वैराग्य छे माटे सहज वैराग्य नी महल ना मंगलाना शिखरना तेवो शिखामणी छे परद्रव्य थी जे परांगमुख छे लियो परद्रव्य एटले आ जीवादी सात तत्वो कया ते अने तेनाथी मुनि परांगमुख छे मुनि त्रिकाणी द्रव्य भगवान आत्मा सन्मुख छे तो आ जीवादी सात पर्याय थी के जे परद्रव्य छे तेनाथी परांगमुख छे। देखो हमेशा बताते त्रिकाली द्रव्य जो है कौन भगवान आत्मा उसके सन्मुख होते हैं तब क्या होता है ये जीवादी सात पर्याय थी कि जे परद्रव्य छे तेनाथी परांगमुख छे। ये परद्रव्य थी परांगमुख यानी बाह्य की बात ही नहीं ली है कौन सी ये पैसा बंगला गाड़ी बल्लाड़ी यो जो बात नहीं ये जो दस प्रकार के जो परिग्रह कहे कौन से बाह्य परिग्रह हाँ भाई हरीश भाई दस प्रकार के परिग्रह जानते हैं बाह्य परिग्रह बोलो बोलो नाम बोलो जानते हैं याद नहीं कोई बात नहीं कौन बता पाएगा आप बोलेंगे हाँ बोलो साहब धन धान्य जोर से बोलना भैया क्या बोलते हैं हाँ सोना चांदी अच्छा हाँ बर्तन कितने हो गए छह हो गए हाँ क्षेत्र वास्तु और क्या रह गया हाँ हाँ दास दासी रह गए ये याद करना भैया क्योंकि इसमें ही घोटाला होता है। देखो सुनो 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 बात तो ऐसी मैं आपको प्रेम से बोलता हूं क्योंकि आपको पहले से ये अपनी उम्र में अन्य बातें अपने दिमाग में बहुत घुसी हुई है ख्याल में है ना तो अभी हमको अगर सही रास्ता समझना हो तो वास्तविकता तो अपने ख्याल में आनी चाहिए। हम सोचे कोई बोलता है कोई बोलता है इसके लिए उसका मान लो मत। आप सोचना कि जो अपने जीवादि रूप जो पर्याय है उसको भी वो परद्रव्य मानता है कौन मुनिराज और ये बाह्य बातों उनके पास हो सकती है सोचो तो सही। तो बाह्य जो बातें हैं वो कौन सी है ये हम देखें तो याद होएगी तो अपने को उसका भाव भाषण होगा ये कान से सुने और ये कान से निकल गया वो ऐसा ऐसा कहता था तुम ऐसा ऐसा कहते जाने दे यार अपन झगड़े काय को करने का ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो बिल्कुल निर्णय होना चाहिए ये तत्व निर्णय जो कहते हैं ना ये तत्व निर्णय में ही बात आती है क्योंकि भैया बात तो ऐसी कि जब तक सच्चा देव सच्चा गुरु और सच्चा शास्त्र इसका इस जीव का निर्णय नहीं होता है तब तक तो उसके सम्यक दर्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। भाई बात तो ऐसी है बुरा मानो मत मानो आप गुरु को नहीं मानते हैं इसके लिए मैं बात नहीं बोल रहा हूं यानी आपका गलत है ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं ये तो भाई हरेक व्यक्ति के लिए बात है हरेक जीव को ऐसा पहला समझना चाहिए क्योंकि जब तक देखो भाई सच्चे देव गुरु शास्त्र ही निमित्त होते हैं और हमारा निमित्त ही खोटा हो तो कार्य कहां से साचा होगा क्योंकि जिसका व्यवहार खोटा है उसका निश्चय कतई सही नहीं हो सकता है लेकिन जिसका निश्चय सही है उसका व्यवहार भी सच्चा होगा। ये दोनों निमित्त निमित्त संबंध है व्यवहार यानी जिसका राग भाव हो राग भाव किसके प्रति सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति उसको व्यवहार कहा गया है। व्यवहार यानी जाके पैर पड़ना भगवान को नमस्कार करना ये व्यवहार की बात नहीं है ये तो जड़ की क्रिया है शरीर जो कर रहे हैं वो तो भाई हम तो ये समझते हैं और समझाना चाहते हैं कि हमें स्वयं को निर्णय होना चाहिए और निर्णय के लिए हम स्वयं उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए तो उसके लिए क्या थोड़ा सा तो शास्त्र का अपने को कंठस्थ होना चाहिए ना जैसे अभी पहले हम गुरुदेव की बात करते हैं सज्जाय माला लाखों श्लोक याद आता एक दो नहीं ये सज्जाय माला क्या होती आप जानो लाखों श्लोक जोया छे और ऐसा नहीं कि पूरे कंठस्थ होते थे उनको फिर भी इतनी सारी बातों को छोड़ छाड़ के उन्होंने जो सही मार्ग अपनाया है उसके पीछे कोई रहस्य होना चाहिए। तो यह जो है ना छह दस प्रकार के बाह्य परिग्रह वो किसको होंगे कि जिसको अंतरंग परिग्रह होंगे उसको और हमको तो परिग्रह नहीं है अंतरंग परिग्रह, लेकिन भाई में अभी क्या करें, संयोग है, रखना पड़ता है, रहते हैं, हमारा कोई उसके मतलब नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कोई कहे भाई कि मैं तो नॉनवेज खाने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, मैं तो बिल्कुल पाप समझता हूं, लेकिन मैं खाता हूं, ऐसा कोई कहे तो क्या उसका कहना ठीक है? वो बिल्कुल गलत है। अंदर से इच्छा हो तो ही वह चीज खावे, ऐसी बात है। वैसे बाह्य परिग्रह कौन रखे कि जिसके अंतरंग परिग्रह है, तो जिसके अंतरंग परिग्रह है बहिरंग परिग्रह, वो मुनि कहां से होवेगा? ये बात मैं किसी को लक्ष्य करके नहीं बोल रहा हूं पहले, लेकिन एक जैसा आपने प्रेम से उत्तर दिया और सही उत्तर दिया 10, अभी हरीश भाई हमारे को नहीं जानते हैं, उन्होंने 10 प्रकार के नहीं जाने, कल मैं पूछूंगा भैया 10 प्रकार के परिग्रह कहीं से भी लिखवा के, कहीं शास्त्र में से ढूंढ के याद करके आना, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन जो यहां टिकेगा वो टिकेगा इसी तरह से। ये देखो छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल से आ रहे हैं, ये 1 साल हो गए ना तेरे को, हाँ, और ये हमारे भाई साहब तो 10 साल से आते हैं, रोज दिन में 2 बार। भाई बात तो ऐसी पकड़ आ जावे ना, तो ऐसा खुमारी चढ़ जाती है अपने स्व के प्रति, उसका कोई हिसाब नहीं। ये दूसरे को दिखावा करना है इसके लिए नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपना कोशिश जारी होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो याद करो, और याद करके आओ तो आप बोलना, मैं याद करके आऊंगा, मैं जरूर सुनूंगा, और सब लोगों को आनंद होगा, ऐसा नहीं कि मुझको आनंद होगा। भाई हम अंदर से प्रयत्नशील है ना, तो मार्ग तो मिलने से कोई तकलीफ नहीं होता। किसी को आज मिले, किसी को कल मिले, किसी को 10 साल के बाद मिले, लेकिन रास्ता दिशा तो सही होनी चाहिए ना। चलो तो अपनी क्या बात है, यहां लिखे हैं कि मुनि त्रिकाणी द्रव्य, ये पेज नंबर 16 लास्ट 2 लाइन्स, मुनि त्रिकाणी द्रव्य भगवान आत्मा ने सन्मुख छे, तो आ जीवादि 7 पर्यायो के जे परद्रव्य छे तेनाथी परांगमुख छे। यहां तो 7 तत्वों को परद्रव्य कह डाला, और वो क्या कहते हैं, एनाथी परांगमुख छे, तो क्या छे, ये स्व तरफ सन्मुख छे। अरे आवो मार लोगों ने सांभळवा पण मळ्यो नथी। देखो भाई कैसा इत्तेफाक से यही बात आई है। हरीश भाई क्या लिखते हैं आप, गुजराती पढ़ सकते हैं ना? हाँ बहुत अच्छा। आवो मार्ग लोगों ने सांभळवा पण मळ्यो नथी, जो तेवो एक बार 2-4 दिवस सांभळे तो तेमने खबर पड़े कि आ तत्व शू छे, परंतु आ सांभळे नहीं ने कहे कि आ एकांत छे, सोनगढ़ वाला पूजा भक्ति नी वात नथी कहता भाई, अहीं पूजा भक्ति आदि नी वात कहेवाय छे, नती कहता एम कोने कहूं, पण ते छे राग ने हेय एम कहवाय छे। प्रभु आ तो तारा हितनी वात छे भाई। अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो गुरुदेव सुबह उठकर नित्य पूजन करते थे, ख्याल में, और जब जब प्रवचन करने को आते थे परमागम मंदिर में, तो वहां पहले भगवान को नमस्कार किए बिना गद्दी पे भी नहीं बैठते। अरे उनका व्यवहार कितना चोखा था उसका कोई हिसाब नहीं, ऐसा हमारे मुमुक्षों में भी कोई नहीं मिलेगा, इतना उनका उच्च प्रकार का व्यवहार था, निश्चय भी उतना ही सॉलिड था। इसलिए कहते देखो अहियां पूजा भक्ति आदि नी बात कहवाय छे, नथी कहता एम कोने कहूं, पण ते छे राग अने छे हेय दोनों बातें बताई एम कहवाय छे, केम के बहिर तत्व छे। ये राग कया तत्व में आवशे नलिन भाई? 7 तत्वों माथी राग तत्व सामा आवशे, कया तत्व में बेसे? शाबाश, घबराव छो शू काम? ये आश्रो तत्व है, तो तत्व यानी एक समय की पर्याय ना, चलो हटाओ, परद नहीं है छे, परद्रव्य छे, बहिर तत्व छे। हा हा हा, કહે છે કે પરદ્રવ્યથી જે પરાંગમુખ છે, ત્રિકાળી પરમ ચિદબિંબ જીન બિંબ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા વિતરાગ મૂર્તિ છે. એ કિસકી વાત કર રહે હૈ? હા પિનાંગભાઈ, દેખો લિખા ના, ત્રિકાળી પરમ ચિદબિંબ જીન બિંબ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા વિતરાગ મૂર્તિ છે, તો એ કિસકી વાત કર રહે હૈ? અરે વાહ, એ પ્રત્યેક જીવ કે આપણી વાત કર રહે, એ કાનજી સ્વામી સ્વયં કી વાત કર રહે એસા નહીં સમજના, યા તો કઈ મહાવીર કી વાત કરે ને, અરે મેં એસા હું એસા એક બાર માન તો સે હાથો પાડ એસા બોલતે. ક્યાં કહેતે હૈ કે ત્રિકાળી પરમ ચિદબિંબ, ચિત યાને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જો હૈ, જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ જો હૈ, એસા જિનબિંબ સ્વરૂપ યાને સાક્ષાત ભગવાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા વિતરાગ મૂર્તિ છે, તો તેની સન્મુખ જે થયો તે પરથી વિમુખ છે એમ કહે છે. જુઓ ને, આ અસ્થિ નાસ્તિ રૂપ અનેકાંત કર્યું, આ રીતે અનેકાંત છે પરંતુ સ્વભાવની પણ સન્મુખ છે અને પર્યાયની પણ સન્મુખ છે, તે સંકેતી છે એવું. ये जो भगवान आत्मा कैसा है, त्रिकाली परम चिदबिंब जिन बिंब स्वरूप भगवान आत्मा वितराग मूर्ति, ऐसा जो प्रत्येक का स्वभाव भाव है, तेनी सन्मुख जे थयो, सन्मुख थवू ते अस्ति, ते परती विमुख थयो ते नास्ति, तो ये अनेकांत हो गया. जो ने आ अस्ति नास्ति रूप अनेकांत करियो, आ रीते अनेकांत छे. लेकिन अभी कई लोग क्या मानते हैं, પરંતુ સ્વભાવની પણ સન્મુખ છે અને પર્યાયની પણ સન્મુખ છે અને તે સંકેતિ છે એવું અનેકાંત નથી. ઉનકી હિ ભાષા મેં કહો તો એ તો પુદડી વાત છે. અહો, શું શ્રી કુંદકુંદા આચાર્ય ને શું તેમના શાસ્ત્રો અમૃતની ધારા વહે છે. ભાઈ, તું અમૃતનો સાગર છો ને, અરે પ્રભુ, તારા અતિન્દ્રિય અમૃતના એક અંશના સ્વાદ આગળ તો ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનો અને ઇન્દ્રાનીના સુખ પણ ઝેર જેવા લાગે છે. આવા અતિન્દ્રિય આનંદથી ભગવાન તું ભરેલો છો. પ્રભુ, તારો સ્વભાવ અતિન્દ્રિય આનંદની લહેજત વાળો છે હો, અને એનો સ્વાદ લેનાર પરથી વિમુખ થઈ જાય છે, અર્થાત જગતના એ માનેલા કલ્પેલા સુખમાંથી હટી જાય છે, અને તે વૈરાગ્યરૂપી મહેલના શિખરનો શિખામણી છે. એ ક્યાં કહેતી? દેખો, યહાં તો ઔર બદલ, ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનો અને ઇન્દ્રાનીઓના સુખ અને ચક્રવર્તીના સંપદા, તે શું કહે છે? એ તો કૂતરાના સડેલા કાન જેવો છે એમ. એસા બતા બહુ બાર બતા સમયસાર મેં તો અનેક બાર આયા. કૂતરાના સડેલા કાન જો, કૂતરા કા કાન જૈસા, એસા યે સારી યે સંપદા ઉનકે લિયે એસી હૈ, એસે વો પરથી વિમુખ હૈ. આહા, પરદ્રવ્યથી જે પરાંગમુખ છે, એ જે સાત તત્વો કયા છે તે પરદ્રવ્ય છે, અને તેનાથી જે પરાંગમુખ છે, અર્થાત જેને તે સાત તત્વોની દ્રષ્ટિ છૂટી ગઈ છે, એવા મુનિને પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહ માત્ર પરિગ્રહ છે. હવે જુઓ શું કહે છે કે પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહ માત્ર જેને પરિગ્રહ છે. એ ક્યાં કહા? દેખો, પડતે હૈ એ પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ, યાને ઇન્દ્રિયો કે જો વિષય હૈ उससे रहित देह मात्र जेने परिग्रह है, यानी इंद्रियों के प्रति जिनकी बिल्कुल आसक्ति नहीं है, इंद्रियों के विषयों के प्रति जिनकी आसक्ति नहीं है, इंद्रियों को जो कोई विशेष रूप से मानते नहीं है, लेकिन देह है वो उनके लिए परिग्रह है. चूंकि तो मुनिराज पोतानी भूमिका नी बात करे छे ने, एटले आम कहूं के શ્રી સમયસારજીની છઠ્ઠી ગાથામાં પણ આચાર્ય પોતે પોતાની ભૂમિકાથી વાત કરી છે ને નવી હોદી અપમત્તો અણપમત્તો પ્રમત્ત અપ્રમત્ત દશા આત્મામાં નથી યે પ્રમત્ત ભી દશા હે પર્યાય હે હાલત હે ઓર અપ્રમત્ત ભી દશા હે વહ આત્મા મેં નહીં હૈ એસા સમજાતે હૈ પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત દશા આત્મામાં નથી ક્ષણે અને પળે જે આ પ્રમત્ત અપ્રમત્ત દશા થાય છે તે વસ્તુમાં નથી વસ્તુ એટલે ત્રિકાળી સ્વભાવમાં નથી આ રીતે આચાર્ય પોતાની ભૂમિકાથી વાત કરી છે જો હવે જે પ્રમત્ત અપ્રમત્ત થાય છે તે વસ્તુમાં નથી તો શું સંયમ અસંયમ પર્યાય વસ્તુમાં હશે કે ભાઈ એ તો ભૂમિકામાં પર્યાયમાં આચાર્ય ઉભા હતા એટલે તે ભૂમિકાથી વાત કહે છે કે આ પ્રમત્ત અપ્રમત્ત પણ હું નથી હું નહીં તેવી રીતે અહીંયા મુનિરાજ પોતે પણ ચારિત્ર દશામાં ઉભા છે ને તેથી એકદમ પરતી ઉદાસ થઈને કહે છે કે પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહ માત્ર જેને પરિગ્રહ છે એટલે શું કે મુનિએ પરણતીને દ્રવ્ય તરફ ઢાળીને દ્રવ્યનો વિષય દ્રવ્યને વિષય બનાવ્યો છે શું કીધું એ જો મુનિરાજ હોતે હૈ વો મુનિરાજ કી જો પરણતિ હૈ પર્યાય હૈ વો પર્યાય કો દ્રવ્ય તરફ ઉન્હોને ઝુકાયા હૈ ઓર ઉસ દ્રવ્ય તરફ ઝુકકર દ્રવ્ય કો વિષય બનાયા હૈ યાની પંચેન્દ્રિય કી જે વિષય તરફ ન ધ્યાન દેતે હુએ અપના ઉપયોગ સારા અપને સ્વભાવ પર લગાયા હૈ इसलिए क्या कहते हैं कि मुनिये परिणति ने द्रव्य तरफ ढाड़ी ने द्रव्य ने विषय बनाव छे तेथी तमने हवे आ देह मात्र रह्यो छे पन पांच इंद्रियों नो फैलाव रह्यो नथी एटले के तेमनु हवे पांच इंद्रियों ना विषयों तरफ वलन नथी फैलाव नथी एटले क्या कि जो पंचेन्द्रिय के जो विषय है उनकी तरफ उनका जरा भी झुकाव नहीं है वह तो अपने स्वरूप तरफ ढलान उनका उपयोग का ढलान किधर है तो कहते हैं अपने स्व के तरफ गए हैं इसलिए कहते हैं कि पांच इंद्रियों ना विषयों तरफ वलन नहीं आई तो उत्कृष्ट चारित्रवंत मुनि नी वात छे एटले कहे छे कि तेमने पांच इंद्रियों नो विस्तार जे पर तरफ जतो हतो ते हवे अटकी गयो छे તેથી તેમને દેહ માત્ર પરિગ્રહ રહી ગયો છે એમ કહે છે નગ્ન દશા થઈ છે હવે તેમને ઇન્દ્રિયોનો વિસ્તાર ફેલાવ પર તરફ જતો નથી વાસ્તવમાં આપણે આત્મા કા અનુભવ કરતે વખત ઇન્દ્રિયો કી કોઈ આવશ્યકતા હિ નહીં હોતી લેકિન ફિર ભી યે જીવ કા ઉપયોગ બાર બાર ઇન્દ્રિયો કે માધ્યમ સે પર તરફ જા રહા હૈ તો ઉસમે તો ઉનકો કોઈ અભી રુચિ રહી નહીં હૈ સારા અપના સ્વભાવ કે તરફ જાને કા ઉનકા પ્રયત્ન ચલ રહે ઇસલિયે કહેતે કે ઉનકો ઇન્દ્રિયોનો ફેલાવ નથી ક્યાં કહેતે પાંચ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત અભી એસા જો દેહ હૈ વો ઉનકે લિયે પરિગ્રહ હૈ મુનિને નગ્ન દશા કેમ થઈ જાય છે કેમ કે તેમને પાંચ ઇન્દ્રિયો તરફના વલનનો ભાવ જ સર્વથા અટકી ગયો છે ભાવેન્દ્રિય અને દ્રવ્યેન્દ્રિય તરફનું વલન જ રોકાઈ ગયું છે તેથી તેમને એકલી નગ્ન દશા થઈ ગઈ છે એમ કહે છે આ અજ્ઞાનીની જેમ એકલી બાહ્ય નગ્ન દશા મુનિને છે એમ નથી એકલો દેહ માત્ર પરિગ્રહ એટલે દ્રવ્યલિંગ તેમને છે એમ નથી પરંતુ દેહના જે આ બધા ઇન્દ્રિયોના કાના છે તે તરફનું વલન જ તેમને રોકાઈ ગયું છે જેમ વસ્ત્ર વિનાની બાહ્ય દશા થઈ છે તેમ ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત અંતરંગ દશા થઈ ગઈ છે એમ કહે છે યાની ક્યા હૈ કે ઉનકે पर पदार्थों में किसी भी प्रकार की आसक्ति रही नहीं है इसलिए पंचेंद्रिय के जो विषय है उनके तरफ तो उनका कोई भी अटेंशन नहीं है तो वो वारंवार अपने स्वरूप में जाते हैं तो परद्रव्य में कौन लेना, ये शरीर भी तो परद्रव्य है ना, ख्याल में है ना। तो शरीर मैं नहीं हूं ऐसी जिनकी 100% खातरी हो गई है, विश्वास हो गया, सम्यक दर्शन पक्का है। और क्या है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को भी सम्यक दर्शन 100% है, लेकिन उसके अभी शरीर के प्रति कहीं ना कहीं मोह बाकी है। वो तो अभी 3 कषाय के चौकड़ी से सहित है, और मुनिराज जो है वो 3 कषाय के चौकड़ी से रहित है। बात ख्याल में आई, 4 चौकड़ी मालूम है ना आपको, कौन सी 4 चौकड़ी है? नहीं मालूम हो तो पूछना, आपका ड्यूटी है भाई। खाली सुनने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि ये बात जब तक अपने गले नहीं उतरती है तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं ऐसा समझ में नहीं आवे। ये बहन है ना, अभी 6-8 महीने से आती है, ये थाना से आती है, आगे कन्नंबर नगर ना, हाँ विक्रोली से। वो भी कुछ नहीं जानती थी, बीच में रुकाना हमको, कोई चिंता नहीं कि कोई आपको बोलेगा नहीं काय को बीच में रुकाते हैं। बोले ये 4 चौकड़ी क्या है, ये अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। इसमें से पहले 1 अनंतानुबंधी सम्यक दृष्टि के जाती है, और ये 3 चौकड़ी का कषाय जो है ना वो रहते हैं, और मुनियों के पहले 3 निकल जाती है, 1 संज्वलन कषाय रहता है। तो 3 कषाय जो आकुलता रूप थे वो नष्ट हो गए, इतनी निराकुलता जिनमें आई है, पर पदार्थ के प्रति कोई भी उनके किसी भी तरह का झुकाव रुचि फैलाव है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जे वस्त्र विनानी बाह्य दशा थई गई है, क्योंकि वस्त्र क्यों रखना, अरे ठंडी न लगे, धूप न लगे, बारिश नहीं लगे, इसके लिए हम रेनकोट फेनकोट वापरते ना, उनके पास क्या है, क्योंकि वो शरीर ही मैं नहीं हूं ऐसा जब मान रहे हैं, तो शरीर का बचाव करने वाला, शरीर का संरक्षण करने वाला बाह्य साधन क्यों खरीदेंगे, क्यों रखेंगे अपने पास। तो ये वस्त्र बिना नहीं बाह्य दशा थी छे, तो वो क्यों हो गई है, तो कहते इंद्रियों ना फैलाव रहित अंतर दशा थी गई छे, एम कहे छे। ये दोनों बातें साथ में लेना। श्रोता शूं ते वो मोक्ष ने ज अनुभवे छे, निश्चय थी तो मोक्ष छे, पण आई तो उपदेश देवानो विकल्प उठ्यो छे, ते समय नी वात करवी छे ने। यानी मुनिराज भी यहां शास्त्र लिख रहे, उपदेश दे रहे, तो तब की बात करो ना। वैसे तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव भी दृष्टि मुक्त हुआ है, यानी दृष्टि मोक्ष है उसको, ख्याल में। तो वो पूछ रहे वो क्या ने मोक्ष अनुभवे छे, तो कह के निश्चय थी तो मोक्ष छे एमने, पर आई हाँ, ये 5 इंद्रिय मन को बाकी, क्योंकि वास्तव में मन के द्वारा भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है, लेकिन वो जो सोचने का वगैरह जो कार्य होता है वो तो चल रहा है अभी हमका। आत्मा के बारे में भी सोचेंगे ना, क्योंकि 24 घंटे तो स्वस्वरूप में लीन तो नहीं हो सकते हैं, तो बार बार जो प्रयत्न होगा हाँ विकल्प होंगे। निश्चय थी तो मोक्ष छे, पण आई तो उपदेश देवानो विकल्प उठ्यो छे, ते समय नी वात करवी छे ने, एटले आम कह्यु छे। छता जे विकल्प उठ्यो छे तेमा पण अमारी तो नास्ती छे एम कहे छे। यानी अभी ये जो उपदेश देने के जो भाव हो रहे हैं, उस विकल्पों में मैं नहीं हूं और मेरे में वो विकल्प नहीं है, ऐसा कहते हैं। केम के स्वरूपना अस्थिपनानु परिणमन छे, त्यां परणा एटले विकल्पना नास्तिपनानु परिणमन पण साथे ज छे। श्री समयसार जी ने निर्जरा अधिकार मां काथा 195-196 मां ज्ञान ने वैराग्य नथी कया, के ज्ञान ने वैराग्य ए बे शक्तियों साथे ज होई छे। यानी क्या कहते हैं, जैसे जैसे इस जीव का ज्ञान स्व के बारे में बढ़ता है, वैसा वैसा उसको वैराग्य होता जाता है। देखो देखो देखो, जैसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव है उसको वैराग्य है ही नहीं, जितने सात्विक की अपेक्षा से। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव होगा वो तो उसका जैसे जैसे ऊपर ऊपर की प्रतिमा धारण करेगा तो उसको वैराग्य बढ़ते जाता है। ग्यारहवें प्रतिमा में तो वो घर छोड़ के मुनियों के संग में रहते हैं ख्याल में, और मुनिराज जो होते हैं उनके तो अधिक वैराग्य है और उतने वो स्वस्वरूप में एकाग्र अधिक है, तो ज्ञान और वैराग्य वे शक्तियों साथे जो हो। अभी किसको स्व का ज्ञान ओछा है, ये ज्ञान ने बारह अंग और नौ पूर्व का ज्ञान, ग्यारह अंग और नौ पूर्व का ज्ञान, वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे, भावश्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान ने वैराग्य ये बे शक्तियों साथे ज हो, ये जो कहना है ना, तो वो ये इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि किसी को वैराग्य हो गया हो और आत्मानुभव नहीं हुआ हो तो वैराग्य सच्चा नहीं, और किसी को ज्ञान आपने अपना अनुभव बहुत है लेकिन कोई बाह्य में वैराग्य नहीं है, मौज मजा करता होगा, तो उसकी भी बात साची नहीं है। त्रिकाली भगवान आत्मा छे तेनु जा ज्ञान थयू एटले त्या परथी उदासपनु एवो वैराग्यपन साथे ज होई छे, जो के आई तो मुनिनी अपेक्षा नो घनो वैराग्य लीधो छे के द्रवेन्द्रिय ना काणारूप आ शरीर एक रही गयु छे, तो पण पांच इंद्रियों नो फैलाव त्या छे ज नहीं। अरे पण जहां भावेन्द्रिय अटकी गई छे क्या वे द्रवेन्द्रिय ने तो वात शू करवी, ए तो पर छे। आहा हा, यानी भावेन्द्रिय यानी जो उसके माध्यम से जानने रूप जो आत्मा के प्रदेश है उधर ही उनका उपयोग नहीं लगता है, भावेन्द्रिय अटकी गई छे यानी भावेन्द्रियों का काम लेना ही बंद कर दिया है, तो द्रवेन्द्रिय होवे और नहीं होवे उससे क्या मतलब है। जैसे हम देखते हैं जो अरहंत अवस्था के जीव है ख्याल में है ना, तो उनका जो जानना रूप कार्य हो रहा है वो भावेन्द्रियों से नहीं हो रहा है, या तो द्रवेन्द्रियों से भी नहीं हो रहा है लेकिन है तो द्रवेन्द्रिय, और उनका जानना तो प्रत्येक आत्मा के प्रदेशों से हो रहा है ख्याल में, यहां पर भी होता है लेकिन जो क्षम है ना ज्ञान का वहां तो क्षायिक ज्ञान है, तो इसलिए उनके भी शरीर की इंद्रिया तो है उसका कोई काम नहीं है, ऐसे इनके भी पार्शल हो गए, शरीर की इंद्रिया है लेकिन उससे वो काम अधिक रूप से नहीं लेते हैं। एटले कि जहां भावेन्द्रिय अटकी गई छे त्यां हवे द्रवेन्द्रिय ने तो वात शू करवी ए तो पर छे, यानी शरीर की जो इंद्रिया जिसको द्रवेन्द्रिय कहते हैं ये तो पर वस्तु छे। आहा हा, आ जड़ शरीर में जे पांच इंद्रियो छे ए तो जड़ छे, तेनी तो वात शी करवी, पन आ द्रवेन्द्रियो जेने निमित्त थाय छे एवी भावेन्द्रिय नो विस्तार जा अंतर में अटकी गयो छे, अर्थात जा भावेन्द्रिय नो फैलावज रोकाई गयो छे त्या मुनि नु एकलू शरीर रही गयु छे। आहा हा, अज्ञानी ने इंद्रियों नो फैलाव होय छे केम के तेनो तो इंद्रियों तरफ ज झुकाव होय छे, ज्यारे आई तो कहे छे के पांच इंद्रियों ना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे, एटले के मुनि नो तो आ देह मात्र परिग्रह होय छे। मुनि तो नग्न ज होय छे, हा नग्न ज होय छे अने भावे पण नग्न होय छे। अभी वास्तव में तो ऐसे भावे नग्नता होय तो बाह्य में नग्नता आव्या विना रहे नहीं, ऐसी बात है। शू कीधु, हा नग्न ज होय छे अने भावे पण नग्न होय छे, अहींया एकला नग्नपनानी एटले द्रव्यलिंगनी वात क्यां छे, जो तेथी तो कहूं के मुनि बधा प्रकारना विकल्पो अने पर्यायोथी उदास छे, ते कारणे इंद्रियोनो परतरफनो बधो फैलाव अटकी गयो छे तथा इंद्रियोनो फैलाव अटकी गयो छे तेथी अतीन्द्रिय स्वभाव तरफ फैलाव थई गयो छे एम कहे छे। श्रीमद्जीए पण अपूर्व अवसरमां एम कह्युं छे ने के मात्र देहते संयम हेतु होय जो, यानी ये जो शरीर है वो संयम के कार्य में आना चाहिए। मात्र देह तो संयम हेतु होय जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो तेमा पण आव्युं के अंतर ने बाह्य निर्ग्रंथ पणू छे ते मुनि दशा छे। अभी दूसरी भाषा में कहो तो जे जीव अंतर थी नग्न छे, शू कहू जे अंतर थी नग्न छे ते बाह्य में नग्न छे, तो अंतर थी नग्न छे एटले शू के जे कशायो छे एना थी रहित छे, ख्याल में आयो? तो जे पर पदार्थ प्रति जे रुचि छे, पर पदार्थ प्रति जे आसक्ति छे, एना थी जे रहित छे ते अंतर थी नग्न होय ते बाह्य में नग्नता होय ने होय छे। तो अहीं भी लख्यू छे ने कि मात्र देहते संयम हेतु होय जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। तो बाह्य में भी निर्ग्रंथ है और अंतर में भी निर्ग्रंथ है, यानी किसी गांठ से रहित है। ग्रंथ यानी ग्रंथी, गांठ। तो हमें तो हर बात पे गांठ लगी है। अरे ये कैलेंडर ऐसा क्यों हो गया, जरा उसका पन्ना फट गया, देखो तो जरा उसको दबाओ तो उधर भी अपनी कहीं ना कहीं गांठ लगी पड़ी है। भाई सीधी रीति से बैठना, हमारा कारपेट खराब मत करना, तो वो कारपेट में भी हमारी गांठ कहीं ना कहीं अटकी पड़ी है, ख्याल में है ना? तो ये उनको तो ऐसा कोई गांठ किसके साथ है नहीं, मतलब किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, किसी के प्रति लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है। ऐसे मुनिराज जो है, जो अंतर से नग्न है, अंतर से निर्ग्रंथ है, वे बाह्य में निर्ग्रंथ होंगे। निर्ग्रंथ यानी जिनकी गांठ यानी आसक्ति पर पदार्थों के प्रति छुट गई है, ऐसे। ख्याल में आया? आई तो देह मात्र परिग्रह मुनि ने कहो छे ने, हा, आई तो जेने देह मात्र परिग्रह होय तेमज जे एकला आत्माना आनंदनी रमतमा रमता होय तेने साधु कहेवामां आव्या छे। जैन दर्शन मां तेने साधु कहेवाय छे के जे छठा सातमा गुणस्थान मां झूलता होय छे। आहा हा, पांच इंद्रियोना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे, आम कहीने ए कहेवा मांगे छे के मुनि ने पांच इंद्रियोनो फैलाव अटकी गयो छे तथा तेने निमित्त बनावीने जे भावे इंद्रिय काम करती हती ते पण अटकी गई छे। आहा, मूल वात तो ए छे, समयसार गाथा 31 पण ए वात छे ने, साचू नग्नपणू एने कहेवाय के जा भावेन्द्रियोनो विस्तार अटकी गयो छे। भावेन्द्रिय ने आत्मा के जो प्रदेश जिसके द्वारा वह बाह्य पदार्थों के इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, वो कारण के द्रव्येन्द्रिय तो निमित्त छे। आ उपादान रूप भावेन्द्रिय जहां अटकी गई छे त्या द्रव्येन्द्रिय नो फैलाव तो छे ज नहीं, तेती हवे मुनि अतीन्द्रिय पना थी ज काम करे छे। ए वात अलिंगन अलिंग ग्रहण मां न आवी। श्री प्रवचन सार जी नी 172 गाथा मां अलिंग ग्रहण बोल आवे छे ने, तो तेना प्रथम 6 बोल आ छे के आत्मा इंद्रियो थी जाणतो नथी। सेकंड पॉइंट, आत्मा इंद्रियो थी जाणवामां आवतो नथी, आत्मा इंद्रियो थी जणाय एवो नथी, तेमज ये तो अभी समझ में आवे ऐसी बात है ना? हाँ, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि द्रव्य इंद्रिया तो जानती नहीं ना, वो तो पुद्गल है, लेकिन यहां इंद्रिया कहने से दोनों साथ में लेना, क्योंकि सिर्फ भावेन्द्रिया जाने ऐसा नहीं, उसको द्रव्य इंद्रिय का माध्यम भी चाहिए। हम कहते हैं ना के आत्मा इंद्रिय गोचर नथी, तो इंद्रिय गोचर ने कौन से इंद्रिय लेना, तो भावेन्द्रिय भी और द्रवेन्द्रिय भी, क्योंकि सिर्फ भावेन्द्रिय हो तो जाने कैसा जब तक द्रवेन्द्रिय नहीं है, और जब द्रवेन्द्रिय सिर्फ है और भावेन्द्रिय नहीं हो मान लो, तो वो तो जड़ है, पुद्गल है, वो जिसमें जानने की तो ताकत है नहीं। यहां पर भी तो वो द्रवेन्द्रिय जानते ही नहीं, जानता तो है भावेन्द्रिय, लेकिन वहां श्रुत ज्ञानी है ना, तो उसकी उतनी कमजोरी है कि उसके पांच इंद्रियों और मन की सहायता के बिना उसका श्रुत ज्ञान होगा ही नहीं। आत्मा इंद्रियों थी जानतो नहीं, आत्मा इंद्रियोथी जाणवामां आवतो नथी एटले आत्मा इंद्रियोथी जणाय एवो नथी तेमज आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमाननो विषय नथी आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान थी जणा एवो छे ते तो सदाय अतीन्द्रिय ज्ञान थी जणाय एवो छे एम कहे छे। लियो पाछो एम कह्युं के सदाय एटले के साधक ध्यान में होय त्यारे ज पोताने अतीन्द्रिय ज्ञान थी जाणे छे एम नहीं, परंतु ए तो पोताने सदाय अतीन्द्रिय ज्ञान थी जाणे ज ज्ञान थी जाने छे एम मारू केमू छे। चार आत्माने परजीवो मात्र अनुमान करीने जाने एवो आत्मा नथी, यानी आत्मा अनुमान से जानने में आवे ऐसी बात नहीं। अभी कहते हैं परजीवो मात्र अनुमान करीने जाने एवो आत्मा नथी, अर्थात बीजाओ मात्र अनुमान वड़े तेने जाने एवो ए आत्मा नथी। आत्मा परने एकला अनुमान थी जाने एवो नथी। लियो इंद्रियो तो काढ़ी नाखी परंतु अनुमान पन काढ़ी नाख्यू। छठो पॉइंट आत्मा पोताना स्वभाव थी जणाय एवो प्रत्यक्ष ज्ञाता छे। आ छठो बोल छे, गजब वात छे। आहा हा, कोई पन शास्त्र थी जुओ तो पन चारे पड़के थी एक ज वात उभी थाय छे। कोई पन शैली थी के कथन पद्धति थी जुओ तो पन पूर्वापर विरोध रहित वात उभी थाय छे। यानी कोई भी शास्त्र में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें होगी ऐसा होगा ही नहीं। अभी ये जो छह बोल है अभी जो हमने पढ़े वो विस्तार से आगे आने वाले हैं, और ये जो 172 नंबर के जो श्लोक आने वाला है उसको अलिंग ग्रहण नाम के नाम से जाना जाता है, और ये कुंद आचार्य के हरेक ग्रंथ में ये है। समय सार में 49 नंबर की ये गाथा है, नियम सार में है, प्रवचन सार में भी आएगी वगैरह वगैरह सब में आने वाली है। यहां तो छह प्रकार बताया, अभी प्रवचन सार में तो 20 बोल दिए, एक ही श्लोक के 20 प्रकार से अर्थ किए हैं, और हम पहला याद करते हैं तीसरा पढ़ेंगे तो पहला भूल जाते, तो 20 नंबर पढ़ेंगे तो पहले का कहां नंबर आवे, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म भेद है उसमें। ये तो याद हो जाए ऐसी बात है, ये छह प्रकार पढ़ेंगे जितना ध्यान में रहे अच्छा है। जे परम जिन योगीश्वर छे जोयू छे एम कहे छे, मुनिए वीतरागी योग मा ईश्वरपनु साध्यु छे। अर्थात अंतर मा वीतराग भाव मा जोड़ान करीने तेमा ईश्वर थया छे। जो के सम्यक दृष्टि पन योगी छे परंतु ते अंशे छे। जारे आ मुनि तो आहा योगीश्वर छे, परम योगीश्वर छे, स्वरूप मा जोड़ान करी जोड़ान थईने वीतरागी ईश्वरता तेमने प्रकट थई छे। आहा योगी नाम त्रिकाली स्वरूप मा जेने पोतानो पर्याय ने जोड़ी दीधो छे, पोताना भगवान स्वरूप त्रिकाली स्वभाव में जेने पोताना एक समय ना पर्याय ने जोड़ी दीदो छे तेने योगी कहेवामां आवे छे। देखो यहां योगी की परिभाषा बहुत अच्छी दी है, कहते हैं कि योगी किसको कहना कि त्रिकाली स्वरूप में जेने पोताना पर्याय ने जोड़ी दीदो छे, यानी जो उपयोग स्वरूप जो उसकी पर्याय है उसको कहां जोड़ दिया है, तो अपने पर्याय पर नहीं, तो त्रिकाली जो स्वभाव है स्वरूप है तो उस पर जिसने जोड़ी, यानी और एक्सप्लेन किया है पोताना भगवान स्वरूप त्रिकाली स्वभाव मां जेने पोताना एक समय ना पर्याय ने जोड़ी दीदो छे तेने योगी कहेवामां आवे छे। जे बावा जोगी जगत मां फरे छे तेने योगी कहता नथी, पण पोतानुं स्वरूप जे पूर्ण ज्ञान आनंद પૂર્ણ આનંદ ઘણ છે તેમાં જેને વર્તમાન દશાને એકત્વ કરી છે અને પરદ્રવ્યથી વિભક્ત કરી છે તેને યોગી કહે છે. તેથી સમખીતીને પણ યોગી કહેવામાં આવે છે. એ નહી વાત હૈ. ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી જીવ કો ભી યોગી કહા કિસ અપેક્ષા સે કે જો અપના ઉપયોગ સ્વમે લગાતા હૈ ઉસકો યોગી કહા હૈ. તો ઉસ અપેક્ષા સે ચતુર્થ ગુણસ્થાન વર્તી ભી યોગી હો સકતા હૈ. સ્વદ્રવ્યમાં જેની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ છે, થઈ ગયું. ચલો ટેપ બંધ હો ગઈ સર. જાવાણી કે જ્ઞાન તે સુજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકણમો સદા દેતો.
બોલો જીનવાણી માતા કી જય.